ઉંટારી બાતા આકાશવાણી ઉદયપુર બીકાનેર બાંસવાડા સુરતગઢ ડુંગરપુર ઓર માઉન્ટ આબુ સે પ્રત્યેક માહ કે દૂસરે ચોથે શુક્રવાર કો શામ 5:30 સે 6 તક આપ સુનેંગે ઊંટો પર વિશેષજ્ઞો કી રાય ઓર જાનકારી
ઉંટારી બાતા કે ઇસ ભાગ કે પ્રાયોજક હૈ રાષ્ટ્રીય ઉષ્ટ અનુસંધાન કેન્દ્ર બીકાનેર
ઉંટારી બાતા કાર્યક્રમ રે હેતાળુ સાથીયા ને મારા ઘણા ને ઘણા રામ રામ રામી રામ 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 સા રામ રામ દેખો સા પર્યાવરણ રો આપણને જીવન મેં કઈ મહત્વ હૈ આપા સગળા જાણાઈ હા હે ની એ પેડ એ પૌધા ઓક્સિજન દેર આપણને જીવિત રાખે હૈ વાતાવરણ ને શુદ્ધ બનાવે હૈ ભાઈ ઊંટ પાલક ભાઈ અર બેન્યા જાણાઈ હૈ કે પેડ પૌધા રે બગેર આપા મિનખારો પશુઆરો પક્ષીઆ કો ઈ પૃથ્વી પર કોઈ અસ્તિત્વ હૈ કોની સા એ પેડ પૌધા શુદ્ધ ઓક્સિજન રે સાગે સાગે લકડી દેવે ઠંડી છાયા દેવે અર ફલ ફૂલ દેવે હૈ તો આપા સગળા ને પેડ પૌધા ને બચાવણો હૈ સા એ પેડ પ્રકૃતિ રે સંતુલન ને બણાર રાખે હૈ એ પેડ પૌધા પશુઆ પક્ષીઆ અર મિનખા રે વાસ્તે વરદાન હૈ હે ની તો ઊંટારી બાતા કાર્યક્રમ મેં આજ ઈસોઈ એક મહેતાઉ વિષય લેર આપા હાજર હુયા હા વિષય હૈ મરુસ્થલીય બાગવાની કે તહેત ખેજડી પ્રબંધન કા પશુપાલન મેં મહેતાઉ ઓર દેખો સા આજ તો સ્ટુડિયો માં મહેમાન પધાર ગયા હૈ આપ હો ડોક્ટર દિલીપ કુમાર સમાધિયાજી હા પ્રધાન વૈજ્ઞાનિક બાગવાની વિજ્ઞાન ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદ સુસંબંધિત બીકાનેર સ્થિત કેન્દ્રીય શુષ્ક બાગવાની અનુસંધાન સંસ્થાન બીકાનેર તો ડોક્ટર સમાધિયાજી આપનું સ્વાગત હૈ સા રામ રામ સા રામ
રામ મેડમ રામ રામ સભી કિસાન ભાઈઓ કો રામ રામ
વાહ ડોક્ટર સાહેબ આપ પધાર ગયા સા બહોત બડો કામ કયો સા રામી રામ રામી રામ સા
રામ રામ મેડમ જી રામ રામ
તો ડોક્ટર સાહેબ કઈ હાલચાલ હૈ આપરા
બહોત બઢિયા મેડમ બહોત બઢિયા ઓર ગરમી પડને લગ ગઈ હૈ
ડોક્ટર સાહેબ બાત તો સાચી કયો ગરમી પડન લાગ ગઈ હૈ
ઇસલિયે અપન કો કૃષિ મે પેડ પૌધો કે સાથ ચલના હૈ તાકિ અપન કો પશુઓ કે લિયે ગુણકારી ચારા મિલ સકે પૌષ્ટિક ચારા મિલ સકે તથા જિસસે અપન કો ઉનકી આર્થિક મહત્વ કો ફાયદા હો હમારે દેશ કી ઉત્તર પશ્ચિમી ગરમ જલવાયુ હૈ યહાં પર બહોત કમ બરસાત હોતી હૈ તાપમાન જ્યાદા રહેતા હૈ સર્દી ભી કડાકે કી પડતી હૈ એસી પરિસ્થિતિઓ મે કિસાનો કી આજીવિકા કો સુનિશ્ચિત કરને કે લિયે ઓર ઊંટ પાલકો કો અચ્છા લાભ મિલે ઇસલિયે અપન કો ખેજડી આધારિત જો યહાં કા મરુદરા કા કલ્પવૃક્ષ હૈ ઉસકો સાથ લેકે અગર અપન ચલેંગે તો યહાં કી કઈ વનસ્પતિયાં હૈ ઉસકો અપન ખેતી કા સ્વરૂપ દેંગે તો હમારે ઊંટ પાલક ભાઈ કો વર્ષભર બઢિયા ચારા મિલેગા ઉનકો આમદની રહેગી તથા ઉનકે ઘરો મે ઉત્તમ પશુપાલન કર સકતા હૈ
વાહ ડોક્ટર સાહેબ વાહ આપ તુમારે મનરી બાત હી કહેતી ડોક્ટર સાહેબ તો આજ રો વિષય તો ઘણો હી ગેરો અર મહેતવ હૈ કે મરુસ્થલીય બાગવાની કે તહેત ખેજડી પ્રબંધન કો પશુપાલન મે કઈ મહેતવ હૈ તો આપ મહેતવ તો બતાઈ દિયો સા પર મે ફેર ભી જાણનો ચાહું કે આજ રે વિષય માથે આપ ઓર કઈ કહેવણો ચાહો
ખેજડી રાજસ્થાન કા વૃક્ષ હૈ ઓર ઇસકો હમારી રાજસ્થાન સરકાર ને ભી રાજ્ય વર્ષ કા દરજા દે રખા ખેજડી કે પેડ પૌધે આપ પ્રત્યેક જગહ મિલેંગે પરંતુ યે પ્રાકૃતિક અવસ્થા મે હૈ વો કાંટે નુમા હૈ પરંતુ જો પશુપાલક હૈ ચાહે ગાય બકરી પાલતા હૈ ચાહે ઊંટ પાલતા હૈ વો હમારી જો પરંપરાગત ખેતી હૈ વો ખેજડી કો આધાર વૃક્ષ કરકે સુરક્ષિત કરતા સંરક્ષિત કરતા હૈ ઇસકે સાથ વો અપને ખેત મે કઈ તરહ કે પેડ પૌધે જૈસે બોરડી હૈ પાલા બેરી હૈ કેર હૈ ગુમટિયા હૈ ઓર તુંબા હૈ સેવણ દામણ બરૂટ ગ્વાર મોટ આદિ મિલાકર એક પરંપરાગત ખેતી કરતા ઉસ ખેતી કે સાથ કિસાન કો વર્ષાકાલ મે તો ગ્વાર મોટ બાજરા સે ફાયદા હોતા હૈ ફિર જબ ગરમી આતી હૈ તો અપને ફોગ હૈ ખીપ હૈ ખેજડી ખેજડી સે તાજા સાંગરી મિલતી હૈ લેકિન હમારે જો પશુપાલક ભાઈ હૈ જો ગાય બેલ ઊંટ પાલતે ઉનકો વર્ષભર ચારા ચાહીએ તો બરસાત કાલ મે તો ચારા મિલ જાતા હૈ લેકિન ગરમી या सर्दी में चारा काम मिलता है, तो उस समय हमारे यहाँ मरुधरा में कुछ ऐसी विशेष वनस्पतियाँ हैं जो अत्यधिक तापमान और कम वर्षा में भी 12 महीना चारा की व्यवस्था कर रखी है, जिसमें खेजरी का लूंग, जिसको हम लूम भी कहते हैं, पत्ती का चारा कहते हैं, जेरबेरी का चारा, बोल्डी का चारा, ग्वार का चारा, इस सब चारों को अगर अपन व्यवस्थित उत्पादन करें, संग्रहित करें, तो किसान को ऊँटों के लिए या पशुओं के लिए वर्ष भर चारे की उत्पत्ति बनी रहेगी। हाँ, उसको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा।
हाँ डॉक्टर साहब, हाँ बहुत ही मोटी बात कही, बड़ी बात कही कि आपने 12 माह किया चारों मिल सके। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँ कि मरुस्थलीय जलवायु में पेड़ पौधा रो कृषि और पशुपालन में कई महत्व है। डॉक्टर साहब,
हमारे जो मरुधरा की परंपरागत खेती है, जो वर्षा आधारित या बिरानी खेती कहते हैं, हमारे किसान आदिकाल से खेजड़ी, केर, कुमटिये, ग्वार, मोल, बाजरा, गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, इन सभी को मिला के ये हमारा पारिवारिक उत्पादन व्यवस्था थी।
हाँ,
और ये अनादि काल से यहाँ चली आ रही थी, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के साथ और आवश्यकता बढ़ने के साथ हमें अब इससे उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा तो हमें वैज्ञानिक तकनीकें अपनानी पड़ेंगी, और उसको हम वैज्ञानिक तकनीक जब अपनाएंगे तो हमें उससे उत्पादन बढ़ने से पशुओं को चारा की व्यवस्था चाहिएगी। चारा जो हमें फिर ये जो पेड़ पौधे हैं उसको वैज्ञानिक तत्वों के साथ खेती करनी पड़ेगी।
बहुत अच्छी बात कही। तो आपा आज खेजड़ी री जिया बात कर रहे हैं, तो अठहरी जलवायु और ऊँटा वास्ते खेजड़ी रो कई फायदो है?
खेजड़ी एक कल्प वृक्ष है।
हाँ,
ये पूजनीय वृक्ष है और इसका एक एक भाग उपयोगी है। खेजड़ी का जो प्राकृतिक वृक्ष है वो बीज से हमारी मरुधरा में हर जगह पनपता, आसानी से पनपता है, कम पानी से पनपता है, परंतु ये प्रारंभिक 4-5 वर्ष तक एक कटीली झाड़ी के रूप में होता है। किसान धीरे धीरे इस वृक्ष को संरक्षित कर पेड़ नुमा आकृति करता है, परंतु ये 12-15 वर्ष बाद जाके इस पर बढ़िया लूंग लगती है, जिसको किसान पशुओं के लिए उपयोग करता है। और यही खेजड़ी को यदि हम वैज्ञानिक जो प्रोसेपिस सिनेरिया कहते हैं, इसका बागवानी महत्व है। इसके ऊपर जब पौधा 12 से 15 महीना होता है और देसी पौधे जो बीजू पौधे हैं, तब इस पर सांगरी लगती है जो कच्ची फलियां होती हैं। इसके बाद जब कच्ची फलियां महीने भर बाद और बड़ी होती हैं, वो पक जाती हैं। पकने पे ये खोखे होते हैं, ये भी बड़े गुणकारी होते हैं, जो बकरी या ऊँट बड़े चाव से खाते हैं। और लूंग किसान क्या करता है, जब परंपरागत तकनीकी होती है तो दिवाली के बाद खेजड़ी वृक्षों की वार्षिक अथवा द्विवार्षिक कटाई चंगाई कर उससे लूंग ले लेता है, और ये वर्ष भर पशु को विशेषकर सर्दी में पौष्टिक आहार में काम में लेता है। और उसको खेजड़ी का, इसलिए हमारे यहाँ खेतों में 15 से लगाकर 150 खेजड़ी के प्रति हेक्टर खेजड़ी के बीजू पौधे हैं। परंतु केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में अब खेजड़ी पर कई तरह के अनुसंधान हुए हैं। किसान भाई यदि इसको अपनाएगा तो किसान को अपने घर में शुद्ध और प्राकृतिक और जैविक पशु के लिए चारा प्राप्त हो सकता है।
वाह डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप बताई। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर दिलीप कुमार समाधिया जी, देसी खेजड़ी की बात आपा करा तो भी मैं तो कांटा होवे, कटीली झाड़ियाँ होवे, तो खेजड़ी माए अब है कहीं कहीं सुधार हो गया है, ताकि बागवानी में इन्हें आपा अपना सका।
बड़ा अच्छा प्रश्न किया आप। खेजड़ी हमारा आधार वृक्ष है, हमारा जनजीवन के लिए बड़ा लोकप्रिय संस्कृति वृक्ष है, परंतु आप इसको वर्ष 2000 के आसपास केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में इस वृक्ष को बागवानी वृक्ष बनाने की परिकल्पना की। अभी हमारे राज्य में असंख्य जो पेड़ हैं वो बीजू हैं, और इसमें कटीले कांटे होते हैं, और इसमें चारा भी कम होता है, और इसमें सांगरी भी भांति भांति की होती है, जिससे किसान को फायदा नहीं होता। यदि हमें बागवानी का वृक्ष बनाना है तो हमें उसमें एक समानता होनी चाहिए। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में करीबन 25 साल पहले इस पर कई तरह के अनुसंधान काम किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हम ऐसे कैसे तकनीकी विकसित करें कि खेजड़ी के बगीचे बने, एक समान पेड़ लगे और उसको जैसे आम का बगीचा होता है, बेर का बगीचा होता है, मौसमी का बगीचा होता है, वैसे हमें खेजरी का बगीचा हो।
अच्छा।
तो संस्थान में कई तरह के अनुसंधान किए गए, उसमें दो अनुसंधान मुख्य है। पहला, इसके खेजरी के पौधों को कलमी कैसे किया जाए, ताकि कलम करने से इसके एक नाम वाले एक जाति के पेड़ हो सके, और दूसरा उसकी किस्म कैसे विकसित की जाए, ऐसी किस्म जिसमें बढ़िया अधिक से अधिक लूंग मिले, अधिक से अधिक चारा मिले और फलियां गुणकारी हो और एक समान सांगरी हो। संस्थान ने वर्ष 2007 में इसकी सबसे पहले किस्म विकसित की, जिसका नाम दिया थार शोभा, और अभी एक किस्म और जारी की है जिसका नाम है थार अमृता। यदि किसान इन पेड़ों को व्यवस्थित लगाएगा तो उसको बहुत बढ़िया चारा मिलेगा और बहुत बढ़िया सांगरी मिलेगी, और उसको बाजार में विपणन करके वो अपना घरेलू आर्थिक पक्ष को भी मजबूत
कर सके है। वाह डॉक्टर साहब, वाह डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रिया हो। तो डॉक्टर साहब, खेजड़ी ने आपा आधार बना या इन्हें अपना खेत किया तैयार कर सका हाँ डॉक्टर साहब, किया विकास कर सका हाँ आपा लोग, और खेत रो विकास किया करा, क्योंकि खेजड़ी तो एक बहुत ही बहुगुणी पौधो है डॉक्टर साहब।
बहुत अच्छी बात मैडम जी। ये खेजड़ी अगर आप कभी बीकानेर, चूरू, नागौर, बाड़मेर आप जब भी जाएंगे, आपको चारों ओर खेजड़ी के असंख्य पेड़ दिखाई देंगे, परंतु यह अव्यवस्थित लगे हुए हैं। और इसकी हमारे यहाँ पर अधिकांश जमीन रेतीली और बीरानी है, वर्षा आधारित है, तो अभी जो पेड़ पौधा होता है उससे खेजड़ी के 8 किलो 10 किलो लूंग मिलती है, और वह भी अनिश्चित होती है। उसको खुला में होता है पौधे तो जानवर चढ़ जाते हैं, बड़े नहीं होते। तो यदि अपन को विकसित करना है खेजड़ी आधारित प्रणाली, खेजड़ी आधारित प्रणाली का मतलब ये हुआ, जिस किसान के पास 4 बीघा 25 बीघा 50 बीघा जमीन का एकल जोत है, वो पशुपालन भी करना चाहता है, बिरानी खेती भी करना चाहता है, तो वो एक व्यवस्था विकसित करेगा। उस व्यवस्था का नाम है खेजड़ी आधारित बागवानी। बागवानी का मतलब ये हुआ कि हम मरुधरा के वो पेड़ पौधे जो कम पानी में और या कि अत्यधिक गर्मी में हमें बढ़िया फल दें, बढ़िया सब्जी दें, और हमारे ऊंट पालन या पशुपालन के लिए 12 महीना चारा दें, तो हम खेजड़ी को एक व्यवस्थित प्रणाली में लगाएंगे। यदि पशुपालन को करना है या ऊंट पालन करना है, तो हमें खेजड़ी के साथ उन पेड़ पौधों को जोड़ना होगा जिससे चारा मिलता है। जैसे अपने पालाबेरी है, बोल्डी है, कुमट, कुमट की फलियों में बढ़िया प्रोटीन युक्त फलियां होती हैं, फिर यह फोग होता है, फोग का भी चारा होता है, लसोड़ा है, ऐसे पेड़ पौधों को अपन एक प्रणाली में लगाएंगे। इसमें खेजड़ी को हम देसी बीजू पौधों को कतार में लगाएंगे और लाइन में लगाएंगे, और उसके बीच में हम कुछ जगह ऐसी रखेंगे, अलग अलग व्यवस्था है, 12 मीटर पे, 16 मीटर पे, 24 मीटर पे, उसके बीच में फिर अपन पालाबेरी लगाएंगे 4x4 मीटर पे, किनारों पे अपन कुमट लगा देंगे, बोल्डी लगा देंगे, और बीच में हम चारा फसलें जैसे सेवन, दामन, ग्वार, चवला, तो हमारे गाय, बकरी, ऊँटों को ये सब एक पौष्टिक आहार मिलेगा, वर्षा ऋतु में भी मिलेगा। और इस समय आप देखो खेजड़ी लहरा रही है, हरी भरी होती है, तो जे मई जून में जब कुछ नहीं मिलेगा तो हमें खेजड़ी का लूम ले सकते हैं, सांगरी ले सकते हैं, गुंदों की पत्तियां होती हैं वो पशु को खिलाते सकते हैं, फोग इसकी हम कभी अप्रैल मई जून में फोग की कटाई कर उसका चारा पशु को खिला सकते हैं, तो वर्षा ऋतु में सेवन है, दामन है, तुम्बा है, ये सब पशुओं के चारे में काम आएगा। तो इस व्यवस्था को विकसित करनी पड़ेगी, और संस्थान में KM7 नाम का एक मॉडल है, प्रक्षेत्र है, वो उसमें किसान एक खेजड़ी को 16x16 मीटर पे 4x4 मीटर पौधा लगाएगा, उसके बीच में जरबेरी लगाएगा, और उसके बीच में वर्षा आधारित सेवन, दामन, ग्वार, मोट आदि करके अपने पशुओं के लिए चारा उत्पादन कर सकता है।
वाह डॉक्टर साहब, तो भाई मॉडल विकसित करने की बात तो आप मैं करना चाहती ही, पहला एक गीतर लो सुन लिया।
हाँ मैडम,
तो चलो सुना एक गीतर लो। तो देखो सा आपा सुनियो गीतड़ लो। तो भाई डॉक्टर साहब क्या लागे हो गीतड़ लो?
बहुत बढ़िया
बढ़िया लागे हो।
हाँ
तो डॉक्टर साहब किसान खने जमीन तो घनी है पर लगभग 12 नी जमीन है, तो आपा किया प्रबंधन करा कि ज्यादा से ज्यादा चारो हो सके? और दूसरी बात डॉक्टर साहब आपा बात कर रहे हैं खेजड़ी री, तो खेजड़ी ने आपा चारा गा किया बना सका कि पशुआ ने 12 माह चारो मिल सके, या यूं कहवा कि गुणकारी पौष्टिक आहार आपा ने मिल सके? और मैं तो वो भी जानना चाहूँ कि एक मॉडल विकसित करना है तो पूरा कार्यक्रम की योजना रे तहत आपा ने करनो वेला।
किसान भाइयों, यदि आपके पास 4 बीघा से लगाकर 25 बीघा या 50 बीघा जमीन का एकल जोत है, मतलब एक खेत है जो रेतीला हो चाहे बिरानी हो, वहाँ कुछ नहीं होता, फिर भी आप वहाँ पर खेजड़ी आधारित चरागाह विकास कर सकते हो। इसके दो तरह के तरीके हैं। सबसे पहले आप अपनी भूमि का सीमांकन कर उसकी तारबंदी करें। तारबंदी करके उसमें 3-4 वर्ष तक आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और वहाँ पर पशुओं का खुला विचरण नहीं करना, क्योंकि अगर खुला विचरण करेंगे तो अपन जो पेड़ पौधे लगाएंगे वो पनप नहीं सकते, फिर अपन कहेंगे भाई पौधा पनपा नहीं, पौधा बढ़ नहीं रहा है, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो जो किसान गाय बकरी भेड़ या ऊंट पालता है उसको अपनी जमीन का क्षेत्र का तारबंदी सबसे पहले करनी पड़ेगी। फिर जो किसान को चारा पहला महत्व है हमारा, क्योंकि चारे से पशुपालन होगा और पशुपालन से हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, अच्छी होती है। तो खेती में जब लाभकारी बनाना है तो पशुपालन सबसे पहला करना चाहिए, और पशुपालन को चाहिए चारा, चारा चाहिए 12 महीना। तो हमें खेजड़ी के साथ साथ ऐसी कैसे व्यवस्था करें कि हमें खेजड़ी के साथ पाला है, चारा है, ग्वार मोठ भी है, प्रोटीन युक्त फोगला है, वो सब मिले। तो हमारे संस्थान में हमने एक मॉडल विकसित किया है जिसमें हमें पूरब में कौन सा पौधा लगाना, पश्चिम में कौन सा पौधा लगाना, उत्तर में क्या लगाना, दक्षिण में क्या लगाना, और खेजड़ी को बीच में कैसे लगाना, और खेजड़ी के बीच में क्या लगाना, ताकि क्या है कि हमारे जो मरुधरा की 20-25 वनस्पतियाँ हैं उसका हम 12 महीने और कम पानी में वर्षा आधारित और प्रतिकूल जलवायु में भी उत्पादन कर सके। और किसानों को उसमें पशुओं को खुला विचरण नहीं करना, लेकिन वो चारा को जब भी अपनी आवश्यकता अनुसार जो फसल सबसे अधिक चारा देती है वो उसकी कटाई चंगाई कर अपना घर में स्टोर कर लेवे और फिर पशुओं को अपने बाड़े में चारा खिलावेगा। तो किसान को 4 बीघा जमीन से खेजड़ी आधारित बागवानी से चारा उत्पादन करेगा तो 500 से 700 क्विंटल चारा प्रति वर्ष और 12 महीना ले सकता है। उसको अप्रैल मई में जैसे उसको लूंग मिलेगी, फोक का भी चारा मिलेगा, जुलाई अगस्त में सेवण दामण, सितंबर में ग्वार चवला, फिर अक्टूबर आते ही उसका पाला बेरी का, नवंबर आते ही कुमट का, तो 12 महीने वो चारे की व्यवस्था कर सकता है।
तो भाई डॉक्टर साहब आप रे केवन रो मतलब ओई जाए कि मेहनत तो आपने करनी ही पड़ती,
कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी 3-4 साल वक्त।
तो भाई एक कहावत है डॉक्टर साहब कि खुदरे मरे ही सुरक दिखे, तो मेहनत तो किसान भाइया ने करनी पड़ती, खुद ही मेहनत करनी पड़ती कि रे भरोसे ना रह, आप खुद ही मेहनत कर सो तो डॉक्टर साहब रे बताए अनुसार ज्यादा हो ज्यादा आप जो है चारागाह पा सको, क्यों डॉक्टर साहब?
हाँ जी मैडम जी, और ये ऐसा मॉडल है अपने खुद की जमीन, खुद के पेड़ पौधे और खुद से पशुधन से, तो यह आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का मॉडल है। किसान को कहीं बाहर मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा, पशु चराने के लिए दूसरे राज्यों में भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको सब चीज़ अपने प्रक्षेत्र में मिलेगा, अपने गांव में आप रोजगार प्राप्त कर सकते हो, और ऊँटों का भी आप दूध उत्पादन करके और खेजड़ी की सांगरी है, केर है, कुमट ये बेच के भी आप आमदनी प्राप्त कर सकते हो।
तो डॉक्टर साहब अबे आप बात करा तकनीक री, वैज्ञानिक तकनीक री, आप बतायो कि भाई की कर आपा एक मॉडल विकसित कर सका। हाँ तो ज्यादा ज्यादा आपा पौधा लगाना चाह, हाँ तो डॉक्टर साहब आप बात बताओ कि पौधा लगाने री वैज्ञानिक तकनीक कहीं है, वैज्ञानिक तरीके से आपा ज्यादा ज्यादा किया पौधा रोपण कर सका? हाँ
किसान भाइयों, अपन बिरानी खेती परंपरागत खेती तो करते हैं, तो अपन को क्या करना है कि आपकी जमीन कैसी भी है और रेतीली जमीन सर्वश्रेष्ठ जमीन है हम इसको नकारना नहीं चाहिए। बालू रेत एक तरह का मीडियम है, तो हमें जो भूभाग चयनित किया है उसकी तारबंदी कर ले, फिर अपन को अपने खेत में ही पौधे तैयार करने, जैसे खेजड़ी के पौधे तैयार करने हैं, कुमट के करने हैं, बोल्डी के करने हैं या फोक के करने हैं, तो उस समय उसके अपन बीज इकट्ठा कर ले। जैसे जेठ महीने में आपको फोक का बीज मिल जाएगा, खेजड़ी के खोके पकेंगे वो बीज मिल जाएगा, इसी तरह दिवाली बाद जरबेरी बोल्डी का मिल जाए, वो बीज इकट्ठा करके थैलियाँ भर के बरसात ऋतु में इसके पौधे तैयार कर लेवे, और उसी जुलाई अगस्त महीने में अपने जो सीमांकन कर लेवे, कौन सा मॉडल लगाना, कितनी दूरी पे लगाना, कतारों में लगाना, और जब बरसात का दौर विशेषकर सावन महीने में अपन को पौधे खेतों में लगा देने, के खेजड़ी हो, बोल्डी हो, गुंदा हो, केर हो इत्यादि के, और जब हम पौधे लगा देंगे तो पहले वर्ष उन पौधों को बढ़िया देखभाल करनी है, और उस पौधों को देखभाल करके अगर पानी की कमी हो तो प्लास्टिक के एक दो टंकियाँ ले लें और उसे पानी भर के एक एक बाल्टी पानी, जब बहुत अधिक गर्मी होती है या बहुत अधिक सर्दी होती है तब एक एक बाल्टी पानी देना, ज़्यादा पानी देना नहीं, और जब ये बगीचा आपका एक वर्ष का हो जाता है तब इसको अपन हमारे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में आके आप इसको कलमी कैसे करें, क्योंकि जंगली पौधे से आपको कम चारा मिलेगा और उसमें कांटे भी खूब होंगे, तो हमारी जो किस्म खेजड़ी थार शोभा है, थार अमृता है, उसके उसकी कलम चढ़ाएंगे, तो जब देसी बीजू वृक्ष एक वर्ष का होता है उसके ऊपर अपन कलम चढ़ाते हैं, कलम बहुत सस्ती चढ़ती है, उसमें रुपया दो रुपया ही खर्चा आता है। हमारे बीघा दिन में कई ऐसे काश्तकार भाई हैं जिनको पौधा कलमी करना आता है, तो यह तरीका बहुत सस्ता है, बहुत आसान, वो सीख सकता है, अगर एक बार वो कलमी करना सीख जाएगा तो वो पूरे खेत में सब पौधों को कलमी कर देगा, और फिर जब वो पौधा बड़ी तीव्रता से बढ़ेगा और तीन चार चार साल में आपका बगीचा तैयार हो जाएगा, और एक पौधे से 15 से 20 किलो खेजड़ी की लूम और साथ ही साथ 4 से 5 किलो ताज़ा एक समान सांगरी जो बाजार में 400-500 रुपए किलो बिकती है वो भी मिलेगी।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो भाई इतनी मेहनत कर ले वे किसान भाई तो ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ ले सके, क्यों डॉक्टर साहब?
हाँ जी मैडम, बहुत बढ़िया।
तो डॉक्टर साहब मैं आ बात जाननी चाहूँ कि चारे के साथ साथ आपा और कमाई किया कर सका कि परिवार रो पशुआ को आपा अच्छे ढंग पालन पोषण कर सका और पर्यावरण भी सुधर सके आपनो।
हाँ मैडम, बड़ा अच्छी बात कही आपने। मरुधरा एक ऐसा प्रक्षेत्र है, ऐसा देश है, यूँ कहूँ कि यहाँ क्या नहीं हो सकता। अपन थोड़ी सी मेहनत करें और तारबंदी कर लें जमीन की, तो पशुपालक भाई पशुओं से तो आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकता है, साथ ही साथ खेजड़ी आधारित जो बागवानी है ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ मरुस्थलीय पेड़ पौधे जो पूर्ण रूप से पौष्टिक से गुणधर्म है, औषधीय गुणधर्म है, और उसको सूखा कर भी अपन अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो खेजड़ी के साथ पाला बेरी है, बोर्डी है, केर है, कुमटियाँ हैं, लसोड़ा है, फोग है, खीप है, तुम्बा, ये सब बागवानी फसलें। इसके अलावा हमारे यहाँ पर वर्षा ऋतु में काचर है, काकड़ियो है, मतीरो है, ग्वार फली है, चवला फली, इन सबको साथ एक व्यवस्था में अगर अपन उत्पादन करें तो अपन को ताज़ा सब्जियां, ताज़ा फल और पशुओं के लिए गुणकारी चारा 12 महीने मिलेगा, और यहाँ की जितनी परिस्थिति की खराब है पर वो सर्वश्रेष्ठ है उसको समझने की आवश्यकता है। इसके अलावा किसान को ऊंट संस्थान, गाय का संस्थान, विश्वविद्यालय और भारत सरकार के ऊंट का, ये भेड़ का संस्थान, बकरी संस्थान, और हमारा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में वर्ष में एक दो बार आके भ्रमण करें, परिवार वालों को वहाँ लाके घुमावे और देखे कि ये किसान ये अपने लिए करें तो ये अपने खेत में आसानी से हो सकता है, बिना पानी से हो सकता है, प्राकृतिक रूप से हो सकता है, कोई इसमें रसायन खाद की आवश्यकता नहीं है, और ये घर बैठे आपको रोजगार दे सकता है और आपको बड़ी गुणकारी भोजन मिल सकता है।
तो भाई कम पानी और कम लागत में आपा अच्छी खेती बाड़ी कर सका हाँ, अच्छो चारो पैदा कर सका हाँ, क्यों डॉक्टर साहब
हाँ, और आत्मनिर्भर बन सकते हैं अपन।
आपरी बात सुन तो बहुत आस बंदी है, और मैं सोचूं कि किसान भाई और बैन्या ये बात ने सुन बहुत फायदे उठा सके।
धन्यवाद।
तो ऊंटारी बात में आज रो विषय हो मरुस्थलीय बागवानी के तहत खेजड़ी प्रबंधन को पशुपालन में कई महत्व है। और आज स्टूडियो में मेहमान हा डॉक्टर दिलीप कुमार समाधिया जी, प्रधान वैज्ञानिक बागवानी विज्ञान केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान बीकानेर। तो भाई डॉक्टर साहब आपने देवा घड़े मानो धन्यवाद।
राम राम जी राम।
आप अपरो वक्त निकाले और माँ लोगों ने इतनी पोठरी और गहरी जानकारी दीनी, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सर। धन्यवाद।
तो आज ऊंटारी बात है मैं इतो ही। इन कार्यक्रम रा संयोजक हा जेपी मीणा, प्रस्तुतकर्ता ही मीनाक्षी मलिक, तकनीकी प्रमुख हा नरेश प्रभाकर और तकनीकी सहयोगी हा सुनील मित्तल, और मैं ही आप सागे मंदाकिनी जोशी। अबे आज्ञा दिड़ाओ, मोखड़ा मोखड़ा राम राम सा, रामी राम 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 सा।
ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर बीकानेर बांसवाड़ा सूरतगढ़ डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी।
ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।